नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, हैकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू, रियल बिग टेक इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड इन डेप्थ सॉल्यूशंस। स्टैनली चियांग की सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू तैयारी पर केंद्रित व्यावहारिक पुस्तक है। लेखक गूगल में बड़े वितरित सिस्टमों पर काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे हैं और पुस्तक का लक्ष्य उम्मीदवार को केवल तैयार उत्तर याद कराना नहीं बल्कि समस्या को व्यवस्थित ढंग से खोलना सिखाना है। इसका आरंभिक भाग नेटवर्किंग, सर्वर, लोड बैलेंसर, डेटाबेस और विश्वसनीयता जैसे आधारभूत घटकों का संक्षिप्त परिचय देता है। बाद के भाग में प्रचलित बिग टेक शैली के डिजाइन प्रश्नों को एक दोहराए जा सकने वाले क्रम में हल किया गया है। पुस्तक की केंद्रीय उपयोगिता यह है कि यह अस्पष्ट प्रश्नों को आवश्यकताओं, अनुमान, उच्च स्तरीय आर्किटेक्चर, डेटा प्रवाह और बाधाओं में बदलने का अभ्यास कराती है, इसलिए इसका स्वर पाठ्य पुस्तक से अधिक इंटरव्यू वर्कबुक जैसा है। साथ ही यह समझाती है कि अच्छे उत्तर का अर्थ सबसे जटिल तकनीक चुनना नहीं बल्कि अपेक्षित पैमाने और सीमाओं के अनुरूप तर्कसंगत समझौते स्पष्ट करना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, सिस्टम डिजाइन प्रश्न को स्पष्ट दायरे और मापनीय आवश्यकताओं में बदलना। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का शुरुआती जोखिम यह है कि उम्मीदवार तुरंत किसी परिचित आर्किटेक्चर का चित्र बनाना शुरू कर दे। चियांग की पद्धति पहले प्रश्न का दायरा तय करने पर जोर देती है। उदाहरण के लिए, किसी सेवा का प्राथमिक उपयोगकर्ता व्यवहार क्या है, पढ़ने और लिखने का अनुपात कितना हो सकता है, तात्कालिक प्रतिक्रिया कितनी जरूरी है और कौन सी विशेषताएं पहले संस्करण में आवश्यक है। ऐसे प्रश्न समाधान की दिशा बदल देते हैं। एक साधारण URL शॉर्टनर में विश्लेषण, कस्टम लिंक और विस्तृत प्रशासनिक नियंत्रण को आरंभ में शामिल करना जरूरी नहीं हो सकता, जबकि अद्वितीय पहचान, तेज रिडायरेक्शन और उपलब्धता मूल समस्या है। पुस्तक अनुमान लगाने को भी इसी चरण का हिस्सा मानती है। अनुरोध प्रति सेकंड, संग्रहण वृद्धि और नेटवर्क भार का मोटा हिसाब उम्मीदवार को यह तय करने देता है कि एकल डेटाबेस पर्याप्त है या विभाजन, कैश और प्रतिकृति की जरूरत है। यहां लक्ष्य बिल्कुल सही संख्या निकालना नहीं बल्कि धारणाओं को खुलकर बताना और उनके डिजाइन परिणाम दिखाना है। यह दृष्टि इंटरव्यूअर को उम्मीदवार की सोच जांचने देती है, साथ ही उम्मीदवार को अनावश्यक जटिलता से बचाती है, क्योंकि हर चुना गया घटक किसी स्पष्ट आवश्यकता से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, दोहराए जा सकने वाले उत्तर क्रम से उच्च स्तरीय आर्किटेक्चर बनाना। पुस्तक का विशिष्ट पक्ष यह है कि अलग अलग प्रश्नों के लिए एक समान समाधान क्रम अपनाया जाता है। पहले आवश्यकताओं और अनुमान को रखा जाता है, फिर प्रमुख घटकों तथा उनके बीच अनुरोध और डेटा के प्रवाह का उच्च स्तरीय चित्र बनाया जाता है। इस क्रम का लाभ यह है कि उम्मीदवार डिजाइन को बिखरे हुए तकनीकी नामों की सूची नहीं बनाता। वह बता सकता है कि क्लाइंट का अनुरोध किस प्रवेश बिंदु से आता है, किस सेवा में व्यावसायिक तर्क लागू होता है, डेटा कहाँ लिखा या पढ़ा जाता है और किन जगहों पर कैश, कतार या प्रतिकृति उपयोगी होगी। बाद में वही चित्र अधिक दबाव वाले हिस्सों की गहराई में जाने का आधार बनता है। उदाहरणतः, यदि पढ़ने की मात्रा बहुत अधिक है तो कैशिंग और लीड प्रतिकृतियों पर चर्चा स्वाभाविक हो जाती है। यदि लेखन क्रम और विश्वसनीय वितरण निर्णायक है तो असिंक्रोनस प्रोसेसिंग और टिकाऊ डेटा लेखन अधिक महत्वपूर्ण होंगे। यह ढांचा समयबद्ध इंटरव्यू में संचार का भी उपकरण है। उम्मीदवार पहले एक समझने योग्य आधार प्रस्तुत करता है, फिर इंटरव्यूअर की रुचि के अनुसार किसी हिस्से में विस्तार करता है। पुस्तक इसीलिए समाधान की अंतिम आकृति से अधिक उस तक पहुंचने वाले तर्क क्रम को महत्व देती है। तीसरा, लोड बैलेंसर, प्रॉक्सी, API गेटवे और सर्वर की अलग भूमिकाएं। चियांग आधारभूत क्लाउड और वितरित सिस्टम घटकों को इंटरव्यू के उपयोगी संदर्भ में रखता है। लोड बैलेंसर का कार्य आने वाले ट्रैफिक को कई सर्वरों में बांटना है ताकि एक मशीन पर अत्यधिक दबाव ना पड़े और किसी सर्वर के विफल होने पर सेवा चलती रहे। प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी अनुरोधों के सामने नियंत्रण परत दे सकते हैं, जैसे रूटिंग, कैशिंग या सुरक्षा संबंधी नीतियां। API गेटवे अनेक क्लाइंट अनुरोधों के लिए एक संगठित प्रवेश बिंदु बन सकता है, विशेषकर जब पीछे कई सेवाएं हो। पुस्तक का उपयोगी संदेश यह है कि इन नामों को सजावट की तरह नहीं जोड़ना चाहिए, प्रत्येक घटक के पीछे समस्या होनी चाहिए, जैसे क्षैतिज विस्तार, सेवा खोज, अनुरोध नियंत्रण, प्रमाणीकरण या आंतरिक सेवाओं को बाहरी दुनिया से अलग रखना। सर्वर को स्टेटलेस रखने का विचार भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब नए सर्वर जोड़ना और ट्रैफिक का पुनर्वितरण सरल होता है। जहां उपयोगकर्ता सत्र या अन्य स्थिति आवश्यक हो, उसे साझा और टिकाऊ भंडारण में रखने की जरूरत पर चर्चा बनती है। इस प्रकार पुस्तक उम्मीदवार को घटक पहचानने से आगे बढ़ाकर उनके परिचालन परिणाम समझने की दिशा देती है। सही डिजाइन वह है जिसमें मार्ग, जिम्मेदारी और विफलता की स्थिति स्पष्ट हो। चौथा, डेटाबेस चयन में NoSQL डीनॉर्मलाइजेशन। प्रतिकृति और संगति के समझौते। पुस्तक डेटा परत को किसी एक सार्वभौमिक डेटाबेस के चुनाव के रूप में नहीं देखती। इंटरव्यू में यह समझाना आवश्यक है कि डेटा का आकार, पहुंच पैटर्न, क्वेरी की जरूरत, लेखन दर और संगति की अपेक्षा चुनाव को प्रभावित करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस जटिल संबंधों और मजबूत लेन देन की जरूरतों में उपयुक्त हो सकता है, जबकि कुछ बड़े पैमाने के उपयोग मामलों में NoSQL संग्रहण लचीले स्कीमा या क्षैतिज विस्तार के कारण उपयोगी हो सकता है। डीनॉर्मलाइजेशन का अर्थ डेटा की कुछ प्रतियां या पूर्व गणना रखना है ताकि बार बार होने वाली रीड क्वेरी तेज हो सके, लेकिन इससे अपडेट के समय असंगति का जोखिम और रखरखाव की लागत बढ़ती है। प्रतिकृति उपलब्धता और रीड क्षमता सुधार सकती है, मगर प्रतियों के बीच डेटा पहुंचने में विलंब हो सकता है, यही संगति का प्रश्न आता है। हर उपयोग मामले में तुरंत पूर्ण संगति जरूरी नहीं होती, पर भुगतान, पहचान या महत्वपूर्ण स्थिति परिवर्तन जैसे मामलों में इसकी कीमत अधिक हो सकती है। कैप प्रमेय का परिचय इस तनाव को भाषा देता है, विशेषकर नेटवर्क विभाजन की स्थिति में। पुस्तक का व्यावहारिक सबक है कि उम्मीदवार को तकनीक का नाम नहीं, स्वीकार किया गया समझौता और उसका उपयोगकर्ता प्रभाव स्पष्ट करना चाहिए। अंत में, प्रचलित डिजाइन प्रश्नों में बॉटलनेक, विफलता और विस्तार की क्रमिक जांच। किताब के प्रश्न आधारित भाग में डिजाइन को अंतिम चित्र मानकर छोड़ नहीं दिया जाता। उच्च स्तरीय समाधान के बाद अगला प्रश्न होता है कि दबाव सबसे पहले कहां बनेगा। किसी सेवा में डेटाबेस रीड, एकल पहचान जनरेटर, हॉट कैश कुंजी, नेटवर्क लिंक या एकल क्षेत्रीय तैनाती बॉटलनेक बन सकते हैं। इनके लिए कैशिंग, शार्डिंग, प्रतिकृति, कतार आधारित प्रसंस्करण या लोड वितरण जैसे विकल्पों पर विचार किया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हर विकल्प नई जटिलता लाता है। कैश पुराने डेटा का जोखिम पैदा करता है, शार्डिंग डेटा वितरण और पुनर्संतुलन कठिन बनाती है, और असिंक्रोनस कतारें तत्काल परिणाम के बजाय अंततः पूर्ण होने वाला काम देती है। इसलिए पुस्तक का ढांचा केवल स्केल करने की सूची नहीं, बल्कि क्रमिक जांच है। पहले सरल संस्करण, फिर मापनीय दबाव, फिर लक्षित सुधार। विफलताओं पर चर्चा भी इसी का भाग है। यदि कोई सर्वर, डेटाबेस प्रतिलिपि या सेवा उपलब्ध ना हो तो अनुरोध का क्या होगा, पुनः प्रयास सुरक्षित होगा या नहीं, और कौन सा डेटा खोना स्वीकार्य है। इस तरह उम्मीदवार दिखाता है कि उसे सामान्य संचालन के साथ असामान्य स्थितियों की भी समझ है। कुछ पाठकों को उदाहरणों का साझा ढांचा दोहरावपूर्ण लग सकता है, पर शुरुआती अभ्यास के लिए वही दोहराव उत्तर देने की आदत मजबूत कर सकता है। निष्कर्ष में, हैकिंग द सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू उन सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए सबसे उपयोगी है जो सिस्टम डिजाइन में नए हैं या जिनके पास तकनीकी अनुभव तो है लेकिन इंटरव्यू में अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से रखने का अभ्यास कम है। विशेष रूप से मध्यम स्तर की भूमिकाओं और बिग टेक शैली की चयन प्रक्रियाओं के उम्मीदवारों को इसका लाभ मिल सकता है। पाठक को वितरित सिस्टम की गहरी विशेषज्ञता पहले से होना आवश्यक नहीं, क्योंकि पुस्तक नेटवर्किंग, सर्वर, लोड बैलेंसिंग, डेटाबेस और संगति जैसे बुनियादी घटकों से आरंभ करती है। फिर भी यह किसी उत्पादन प्रणाली बनाने की पूर्ण इंजीनियरिंग संदर्भ पुस्तक नहीं है। गहराई से कार्यान्वयन, वास्तविक परिचालन लागत, सुरक्षा या विशिष्ट डेटाबेसों के व्यवहार को समझने के लिए अतिरिक्त स्रोत उपयोगी रहेंगे। इसकी अलग पहचान संक्षिप्त सिद्धांत और प्रश्न आधारित अभ्यास के संयोजन में है। कई सिस्टम डिजाइन पुस्तकें या तो अवधारणाओं की विस्तृत व्याख्या करती है या तैयार आरेखों के रूप में उत्तर देती है। चियांग का जोर इनके बीच के निर्णय क्रम पर है, यानी आवश्यकता पूछना, अनुमान लगाना, आधारभूत डिजाइन बनाना, बॉटलनेक पहचानना और समझौते बताना। यही क्रम इंटरव्यू में दोहराया जा सकता है। जिन पाठकों को हर उदाहरण में बिल्कुल अलग तकनीकी अंतर्दृष्टि चाहिए, उन्हें समाधान कुछ हद तक एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उसी पुनरावृत्ति से एक स्थिर उत्तर देने की भाषा विकसित होती है। इसलिए इसे तैयारी के शुरुआती या मध्य चरण में आधार ग्रंथ की तरह और बाद में कठिन प्रश्नों तथा वास्तविक निर्माण अनुभव के साथ मिलाकर पढ़ना सबसे व्यावहारिक रहेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं स्टैनली चांग, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।